प्रेम की जो बातें हैं, जिसका रसास्वादन आस्वादन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन में अपने लीला अंतर्गत करते रहे। जगन्नाथपुरी में क्या किया उन्होंने, अंतिम जो 18 वर्ष की जो लीला हुई, और उसमें भी अंतिम कुछ वर्षों में तो बस राधा कृष्ण माधुर्य, इसी की चर्चा। यही रामानंद राय वैसे जिनके साथ अभी अभी मुलाकात हुई है, ये मद्रास के गवर्नर राय रामानंद गोदावरी के तट पर राजमंड्री, राजमंड्री नाम सुना आपने, अब तो महाराष्ट्र के बाहर एक कदम भी नहीं रखते, ऐसा कोई संकल्प है आपका, जैसे भगवान वृंदावन से बाहर नहीं एक कदम रखते, या पुणे से बाहर एक कदम नहीं रखने का आपने शायद व्रत लिया होगा, तो फिर ये सब पता नहीं चलेगा। तो गोदावरी के तट पर ये कोहूर, हमने कहा था कोहूर राजमंड्री ये स्थान है जहां पर ये मिलन दोनों का हुआ है, राय रामानंद श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो यही राय रामानंद फिर आगे जब आप चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करोगे, चैतन्य लीला को सुनोगे, तो यही राय रामानंद अब ये इस्तीफा देंगे रेजिग्नेशन, अपनी नौकरी छोड़ेंगे, राजीनामा और पहुंच जाएंगे जगन्नाथपुरी, और वही रहेंगे। और चैतन्य महाप्रभु के बड़े ही विशाखा है, तो कृष्ण के बगल में ही ललिता विशाखा का स्थान है। और चैतन्य महाप्रभु जब राधा का भाव का ही अनुभव करने के उद्देश्य से तो गोलोक से प्रकट हुए थे, तो और कार्य तो पहले किए, धर्म की स्थापना, हरि नाम का प्रचार। ए राधार भावे जे बे गौर अवतार, राधार भावे जबे ए बे गौर अवतार, गौरांग महाप्रभु का अवतार राधार भावे, राधा का भाव। हरि कृष्ण नाम गौर करिला प्रचार, तो ये हरे कृष्ण नाम का प्रचार जो कलयुग का धर्म है, इसकी स्थापना का कार्य पहले किए जीवों के उद्धार के लिए, और फिर जिस उद्देश्य से प्रभु, या जिस एक मुख्य उद्देश्य से प्रभु प्रकट हुए थे, राधा को जानना चाहते, राधा के भाव को जानना चाहते थे, तो राधा के भाव को अपना के प्रभु रहे जगन्नाथपुरी में, तो उस स्थिति में राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु की छाया बन के ही वहां, मतलब छोड़ते नहीं थे उनको, सब समय उनके बगल में साथ में रहा करते थे, और सभी राधा भाव माधुरी लीला की खूब चर्चा करते थे, यही राय रामानंद। तो श्रीमद् भागवतम में भी कुछ माधुरी लीला की किंचित सी चर्चा तो है, लेकिन अधिक चर्चा तो चैतन्य चरितामृत में है। इसीलिए भी जैसे हम लोग प्रारंभ में कह रहे थे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की बात, तो भागवतम को कहा है कि ग्रेजुएशन का ये ग्रंथ है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन का ग्रंथ तो ये चैतन्य चरितामृत है। ये अंतर क्यों, कैसे आया, तो ये माधुरी लीला की अधिक चर्चा, जो सर्वोच्च प्रेम के रूप में यहां स्थापित किया जा रहा है इस संवाद में, इस साधन साध्य सिद्धांत में, उसकी अधिक चर्चा चैतन्य चरितामृत की अंतिम लीला में है। तो कृष्ण सौंदर्य, कृष्ण का जो सौंदर्य है, सौंदर्य सुंदरता से आता है सौंदर्य, मधुरता से आता है माधुर्य, ऐसे कई शब्द बन जाते हैं। धीर धीर से आता है धैर्य, शौर्य शूरता से आता है, ऐसे कई शब्द आते हैं। तो माधुर्य, माधुर्य की सर्वोच्च सीमा या सौंदर्य की सर्वोच्च सीमा तो साक्षात कृष्ण है ही। ब्रज देवी रसंगे तार बाड़ ये माधुर्य, किंतु राय रामानंद कहते हैं ऐसे जो स्वयं ही सौंदर्य की एक सीमा है वो कृष्ण, उनका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है, वो सौंदर्य और एक ऊंचाई तक पहुंच जाता है या ऊंचाई बढ़ती रहती है। ये कैसे होता है? ब्रज देवी रसंगे तार बाड़े माधुर्य, ब्रज देविया जो है, ब्रजांगनाए जो है, गोपिया जो है, उनके संग में आने से कृष्ण के माधुर्य का वर्धन होता है, उसमें वृद्धि होती है। प्रभु कहे एव साध्यावधि सुनिश्चय, कृपा करी कह यदि आगे किछु होय। हाँ हाँ, तुमने अभी जो कहा निश्चित ही ये पूर्णता की सीमा है, किंतु आप मुझ पर कृपा करें और यदि कुछ और हो तो उसे भी कहें। उनको प्रेरित कर रहे हैं ताकि और अगर कुछ है तो और कह सकते हैं। राय कहे इहार आगे पूछे हे न जने, हे तदीन नाही जानी आछ ये भुवने। कहते कि अब तक तो मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जिसने कहा कि इसके भी आगे कुछ है, ऐसा पूछने वाला भी नहीं मिला था। आप तो न भूतो न भविष्यति जैसी बात प्रश्न कर रहे हो। इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि, जहार महिमा सर्वशास्त्रे ते बखाणी। तो साध्य शिरोमणि, बाकी तो साध्य कहे, अब तक तो साध्य चल रहे थे, अब साध्य की शिरोमणि, सब आभूषण सब अलंकार पहनने के उपरांत एक मणि अंत में पहना जाता है, कोई विशेष मरकत मणि जैसा शिरोमणि होता है, वो शिरोमणि या सिर में धारण करते हैं, जो और मणियों की तुलना में सर्वोच्च होता है, अति मूल्यवान तेजस्वी होता है। जैसे सभी आभूषणों में भगवान का कंठी कौस्तुभ मणि विराजित, जैसे वही कौस्तुभ मणि है। तो साध्य शिरोमणि तो है राधा का प्रेम, और इसका वर्णन शास्त्र में हुआ है। अनया राधितो नूनम भगवान ईश्वर हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो याम अनयद्रह। श्रीमद् भागवत के दसवें स्कंद में जो रास पंच अध्याय, रास के जो पांच अध्याय है, वहां का एक ये श्लोक राय रामानंद जिन्हें सुनाया। अनया राधितो नूनम, भागवतम में आपने शायद सुना होगा, सुनने में आता है कि राधा का नाम ही नहीं है, और कहीं पर अगर है तो यही है। ये जो श्लोक है इतना ही नाम, जो पूरा नाम भी नहीं कहा, कुछ संकेत ही है, यही है, इतना ही है राधा का नाम भागवतम में। इसका तात्पर्य ये नहीं कि राधा, वैसे कई लोग राधा राधा है नहीं, राधा ये व्यक्ति तो कल्पना ही है, यहां तक अज्ञानवश कुछ लोग कह बैठते हैं। इस बात का रहस्य वे नहीं जानते क्यों राधा का नाम नहीं कहे सुखदेव गोस्वामी, जब उनका नाम ही है शुकेष्टा, शुकइष्टा कौन है, राधा रानी है। शुक शुक सुखदेव गोस्वामी की इष्टा कौन है, राधा रानी। सारा संसार तो कृष्ण को भजता है, तो सुखदेव गोस्वामी किसको भजते थे, राधा रानी को भजते थे। राधा की आराधना या राधा के ही निवृत्त निकुंज के एक शुक, एक तोते ही सुखदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए थे, ऐसी भी समझ है, इसको भी पुष्टि है शास्त्रों की। भगवान के अपने निज धाम के गोलोक के जहां राधा रानी का निवास है, या कुंज है, निकुंज राधा, कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, तो उन कुंजों में अलग अलग पंछी चहकते हैं, बोलते हैं, तोता मैना शाक सारिका, शुक सारिका भी रहते हैं, तो उन एक विशेष तोता उस निकुंज का एक तोता प्रकट हुआ व्यास नंदन के रूप में सुखदेव गोस्वामी, और वही राधा रानी की भी कथा या राधा कृष्ण की कथा, रास क्रीड़ा का वर्णन जब कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा कठिन है ये राधा का नाम कहना। राधा का नाम कहते तो उस नाम उच्चारण के साथ वे भाव विभोर हो जाते, शरीर की सुध बुध खो बैठते। अभी तो कथा के लिए बैठे हैं और कथा तो खंडित नहीं हो सकती, राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही है और 7 दिवस की अवधि है। अब रास क्रीड़ा की कथा 10वें स्कंद की हो रही, मतलब अब बस और एक आध दिन बचा है राजा परीक्षित का, तो कथा तो अखंड होनी चाहिए। किंतु अगर वे राधा का नाम लेते तो बस हो गया, फिर 6 महीने के लिए गए काम से, 6 महीने का हो या 6 दिन का हो, फिर अंतर्मुख होंगे। वैसे भागवतम में वर्णन आता है कि राजा परीक्षित के पुत्रों ने जो व्यवस्था कर रहे थे उस कथा का, केशव प्रभु और हरिदास आनंददास वगैरह, यह जामवान इत्यादि प्रभु यह व्यवस्था करते, वहां तो वहां कुछ ऐसे वाद्य रखे थे उस कथा के समय, नगाड़े रखे थे। आप कहोगे कथा है तो कीर्तन में तो वाद्यों का उपयोग होता ही है, तो इसलिए रखे होंगे। हमारे एकलव्य प्रभु के पास तो ट्रम्पेट भी है और क्या क्या ये वाद्य नहीं, केवल कथा कीर्तन के लिए मंजीरा और करताल और वीणा ये वाद्य नहीं, बड़े बड़े नगाड़े रखे थे और भी ऐसे उच्च स्वर नाद वाले कुछ वाद्य रखे थे। आप कहोगे इसका उद्देश्य है क्या, क्या किस उद्देश्य से? अगर सुखदेव गोस्वामी अगर अंतर्मुख होते हैं फिर वो कहां बैठे हैं और कथा हो रही है इसको भूल जाएंगे तो पुनः उनको बहिर्मुख करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? नगाड़े बजाए जाएंगे, ऐसी ध्वनि उच्च ध्वनि स्वर की आवश्यकता होगी ताकि पुनः उनको कुछ बाह्य ज्ञान हो। इस उद्देश्य से बड़े बड़े नगाड़े रखते थे, जैसे बाजे रखे हुए थे, वाद्य रखे हुए थे। तो वाह, बोलो श्री राधे, श्याम। कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, हमारे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जहां कथा कर रहे तो ऐसा कहना संभव नहीं था, वे स्वयं कहे या और कोई कह रहा है तो उसको सुनेंगे और फिर कथा आगे बढ़ेगी, ऐसा संभव था नहीं। उन्हें अंतर्मुख होके मतलब अंतर्दर्शन, अंतर्मुख होके वहां दर्शन करेंगे। राधा कहते ही राधा का दर्शन, राधा कृष्ण कहते ही राधा कृष्ण के लीलाओं का दर्शन, और वैसे भी दर्शन करते हुए अपने अंतरंग में कथा किया करते थे, लेकिन इस माधुर्य लीला से कुछ थोड़ा सेफ डिस्टेंस, कुछ सुरक्षित अंतर पर रह के ही माधुर्य लीला रास क्रीड़ा की बातें सुखदेव गोस्वामी ने बड़े सावधानी से की हुई है। तो अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो याम अनयद्रः। तो सारे अन्य गोपियों को अलग छोड़ के एकांत में अनया आराधितो, ये यही तो है अनया, ये तो है सर्ग, सबको छोड़ा और इसको भगवान हरिरीश्वरः इनको अलग से मिले, गोपनीय स्थान पर मिले। अन्य गोपियों से राधा कैसी भिन्न है ये यहां कहा जा रहा है। साध्य शिरोमणि इहार मध्य, इहार मध्य मतलब सभी गोपियों के, ब्रज देवियों के मध्य बीच में राधा का प्रेम कैसा है? साध्य शिरोमणि प्रभु कहे आगे कहो सुनिते पाई सुखे अपूर्वामृत नदी बहे तुम्हार मुखे। कह रहे क्या और सुनना चाहता हूं मैं, पता नहीं आप और सुनना चाहते हो कि नहीं आप, लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो और सुनना चाहते हैं। आप नहीं सुनना चाहते तो आप प्रसाद के लिए जा सकते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु सुनना चाहते तो राय रामानंद तो यहां और कुछ समय के लिए सुनाते रहेंगे। तो अपूर्व अपूर्व अमृत नदी बहे तुम्हारे मुखे, आपके मुखार बिन से तो क्या कहा जाए, अमृत की नदी बह रही है, उस अमृत का पान मैं कर रहा हूं, उस अमृत के सागर में मैं गोते लगा रहा हूं, अभिषेक कर रहा हूं अपना। राधा लागी गोपी रे यदि साक्षात करे त्याग, तबे जानी राधा य कृष्णेर गाढ़ अनुराग। तो वे कहते हैं जब अन्य गोपियों को त्याग के जिस गोपी का उन्होंने स्वीकार किया या रह एकांत स्थान में जिस गोपी को मिले वो राधा रानी में कितना गाढ़ अनुराग कृष्ण का होना चाहिए, इसको हम समझ सकते हैं। सर्वोपरि है, सब गोपियन में ये राधा बड़ी है। राय कहे तवे सुन प्रेमेर महिमा, त्री जगत राधा प्रेमेर नाही क उपमा। राधा के प्रेम की उपमा तुलना तो संभव ही नहीं है, और किसके साथ, एक ही राधा है, गोपियां भी अनेक है दास्य भाव में, लेकिन राधा के प्रेम की उपमा और किससे की जाए। गोपी गणेर रास नृत्य मंडली छाड़िया, राधा चाही वने फिरे विलाप करिया। गोपी गणेर रास नृत्य मंडली छाड़िया, राधा चाही, तो राधा को ढूंढने के लिए कभी राधा, जब राधा कभी सोचते देखो मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार हो रहा है मानो मैं उस गोपियों की भीड़ में से मैं भी एक ही गोपी वैसी ही कोई गोपी हूं, ऐसी थोड़ी ही मैं हूं। जब कृष्ण कभी राधा की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देते तो राधा रानी मान करके बैठती है, और राधा रानी जब मान करती है रूठ जाती है तो फिर वो रास मंडल छोड़ के दूर जाती है वन में। तो ऐसे राधा रानी को ढूंढने के लिए कृष्ण जाते हैं। राधा चाही वने फिरे विलाप करिया, अलाप विलाप करते हुए दुखी होके उस राधा के खोज में निकलते हैं कृष्ण। शतकोटि गोपी संगे रास विलास, तार मध्ये एक मूर्ति रहे राधा पाश। और जब कोटि कोटि गोपियों के साथ जब कृष्ण रास नृत्य करते हैं तो राधा रानी के साथ वैसे एक विशेष रूप में अपने मूल रूप में तो रहते ही है, राधा के पास में रहते हैं। साधारण प्रेमे देखी सर्वत्र समता, राधा कुटिल प्रेमे होइल वामता। तो समता पसंद नहीं है, औरों से जितना प्रेम स्नेह और गोपियों से जितना है उतना ही राधा रानी से भी कृष्ण का प्रेम है, इस प्रकार की समता राधा रानी को पसंद नहीं है, इसलिए वामता वो अलग बन जाती है। या राधा रानी के कुटिल प्रेम, प्रेम की भाषा या मार्ग कुछ सीधा नहीं होता है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसमें वक्रता होती है, तो वह उससे उसकी शोभा भी और प्रेम कि कुछ गाढ़ता गाढ़ा भी बन जाता है वो प्रेम। क्रोध करी रास छाड़ी गेला मान करी तारे ना देखिया व्याकुल हैल श्रीहरि। तो मान करके जब रास छोड़ती है, रास क्रीड़ा से दूर जाती है, तो भगवान व्याकुल होके उसको मिलने जाते, ढूंढने जाते हैं। तहां विनु रास लीला नाही भाय चित्ते, मंडली छाड़िया गेला राधा अन्वेषिते। इतने कोटि कोटि गोपिया है, रास क्रीड़ा तो संपन्न हो रही है, लेकिन राधा रानी नहीं है तो कुछ मजा नहीं है। सारी गोपियां एक ओर, राधा रानी दूसरी ओर। राधा रानी का जो अद्वितीय जो स्थान है, पदवी है, उस पर प्रकाश यहां डाला जा रहा है। इतस्ततः भ्रमी कहा राधा न पाइया, विषाद करे न काम वाणे खिन्न हैया। राधे 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 कहा हो राधे। राधा की खोज में जैसे दंडकारण्य के या दंडकारण्य में ही राम भी खोज कर रहे थे सीते, तो वो यहां वृंदावन के वन में कृष्ण राधा के खोज में उसको पुकार रहे हैं, लेकिन राधा नहीं मिल रही है। तो उनका स्नेह राधा के प्रति और ही कुछ उदित हो रहा है, मानो ये समझना आसान नहीं है। काम बाणे तो कामदेव जो बाण लेके घूमते फिरते रहता है, और दिल को जब काम बाण घायल कर देते हैं, आप लोग देखते रहते हो, एक हार्ट दिखाते इस प्रकार का, और फिर क्या दिखाते, एक बाण दिखाते, कॉमन सीन होता है। वो बाण किसका बाण है, कामदेव का बाण है, कामदेव के बाण से घायल हुआ तो फिनिश्ड समाप्त, फिर घायल ही। लेकिन इस संसार के या स्वर्ग के काम देव की पहुंच भगवान तक नहीं है, या कृष्ण ही स्वयं काम है, या प्रेम है, यह काम का गंध भी नहीं है, ये हमें भली भांति समझना है। तो दिव्य काम, तो इस संसार के कई कामों को कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष, कोटि कोटि कंदर्प, उनको आकर्षित करते हैं भगवान अपने सौंदर्य की ओर, तो फिर उनकी काम वासना समाप्त हो जाती है। या उनका कंदर्प, उनका कोई गर्व है, अभिमान है अपने सौंदर्य की, काम देवता वैसे सौंदर्य का खजाना भी होता है, सौंदर्य की मूर्ति। और काम युवक युवतियों में, स्त्री पुरुषों में काम को जगाने का कार्य इस काम देवता का ही है। तो नारद मुनि के पास आ गए काम देवता, हम अपने बाणों का आप पर प्रयोग करेंगे। नारद जी ने कहा मैं तो कोई बड़ा मोटा कोई व्यक्ति नहीं हूं, तुमने मुझे घायल भी तो किया तो तुम्हारा कुछ नाम वगैरह नहीं होगा। मैं तो दासानुदास क्षुद्र, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, तुम अपने बाणों का प्रयोग उस पर अगर कर सकते हो, उनको अगर घायल कर सकते हो, तो बस तुम्हारा नाम सारे संसार में होगा। हाँ कौन है, कौन है वो जानना चाहता, ऐसा कौन व्यक्ति है जिनको मैं अगर घायल करूं तो फिर मेरा नाम होगा। हाँ उनका नाम है कृष्ण। तो आप वो समय जाना जब वे रास क्रीड़ा में रहते हैं, रास क्रीड़ा के समय अपना धनुष बाण पुष्प बाण, उनका बाण पुष्प बाण, उसमें भी पांच बाण की चर्चा है। तो ये काम देवता गया अपना बाण लेके, रास क्रीड़ा हो रही थी तो कुछ दूरी पर छिप के अपना बाण चलाना। लेकिन भगवान इतने तेजी से नृत्य कर रहे थे तभी सोचा था अभी अभी निशाना लगाता हूं, अभी तो जरूर पहुंच जाएगा मेरा बाण, भेद देगा। तो वो छोड़ने ही वाले थे तो कृष्ण आगे बढ़ जाते हैं, वहां है नहीं। तो ऐसे कई सारे प्रयास होते हैं, तो पूरा ध्यान कृष्ण की ओर है, श्याम सुंदर छवि है, चेहरे पर मुस्कान, और क्या रास क्रीड़ा का समय है तो वहां तो कोई सौंदर्य की सीमा ही नहीं है। गोपियों के संग में तो भगवान का माधुर्य और भी बढ़ जाता है, उसका दर्शन कर रहे हैं पूरे एकाग्र होकर कि बाण चलाना है। इन कितने सारे प्रयास उनके विफल हुए, लेकिन इतने में हो क्या रहा था, वो काम देवता का काम भी प्रेम बन गया। उसने धनुष भान फेंक दिया और कृष्ण की शरण में आया। रीव, ऐसे कुछ और भी रोचक कथा है, मैंने तो ऐसी नहीं बताई रोचक बना के, लेकिन बड़ी विशेष वृंदावन में वो स्थान भी बताते हैं, यहां पर जब रास क्रीड़ा हो रही थी तो काम आए थे। ऐसा कुछ कृष्ण बलराम मंदिर के पीछे भी जहां परिक्रमा मार्ग है वहां कुछ कहते हैं वो स्थान जहां काम देवता ने निशाना बनाया था एक दिन कृष्ण को। तो नाम किसका हुआ आज, नाम यहां किसका नाम, यहां कृष्ण का नाम हो रहा है। ये जो अभी कथानक कहा इसमें कोई काम देवता का तो कोई गौरव नहीं रहा, कुछ नहीं भी नहीं, मतलब शरण में आया कृष्ण के, तो गौरव तो कृष्ण का ही बढ़ा। उसका तो पराजय हुआ। तो काम कृष्ण के समक्ष कोई टिक नहीं सकता। और ये काम को तो वैसे शिव जी ने भी क्या किया था, भस्म किया था। जब ध्यान अवस्था में बैठे थे शिव जी, वो करना चाहते प्रभु का ध्यान, तो शिव जी ने अपना तीसरा त्रिनेत्र, जो तीसरा नेत्र खोला, तो उसी के साथ इस काम को भस्म किया। तो शिव जी अगर उसको भस्म कर सकते हैं तो कृष्ण तो आसानी उसको नचा सकते हैं काम को। तो जहां कृष्ण है वहां माया का अधिकार नहीं है, जहां प्रेम है वहां काम का कोई स्थान नहीं है। यहां इसलिए प्रेमा भक्ति की यहां चर्चा हो रही है, प्रेमा भक्ति साधन। एक तो भक्ति साधन हो, और फिर वो ज्ञान मिश्रा नहीं हो, प्रेमा भक्ति हो, फिर उसमें भी कई प्रकार बताए, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य। तो ये प्रेमा भक्ति की प्राप्ति से व्यक्ति काम से बच सकता है। हमको व्यस्त रखने वाला इस संसार में कौन व्यस्त रखता है? हमको काम ही रखता है। यह दो ही तो बातें हैं, एक है काम, दूसरा है प्रेम। है प्रेम तो भगवान के धाम का प्रेम है, अलौकिक प्रेम है, दिव्य प्रेम है, उसकी छाया मात्र है काम, जिसको कभी कभी हम लोग अज्ञानवश उस काम को ही क्या समझते हैं, प्रेम समझते हैं, फिर आई लव यू वगैरह वगैरह की बातें चलती रहती है। मतलब आई एम लस्टी आफ्टर यू ऐसे कहना चाहिए, मतलब मुझमें इतनी काम वासना प्रकट हुई, बस मैं अब अंधा हो चुका हूं, काम अंध। प्रेम का प्रश्न ही नहीं, प्रेम होता तो राधा कृष्ण की ओर दौड़ता, वन का रास्ता पकड़ता, हो वानप्रस्थी बनता, कोई सन्यास ग्रहण करता। प्रेम आई लव, तो लव तो बड़ा अलौकिक है, लव अलौकिक है, उसकी छाया मात्र। काम है जो सारे संसार को व्यस्त रख रहा है। कौन है, क्या है जो मुझसे ऐसे कार्य करवाता है? अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिवनियोजितः, बलपूर्वक मुझसे कोई कार्य करवा रहा है, कोई पाप कृत्य करवा रहा, कौन है वो? ऐसे जब अर्जुन ने पूछा गीता के तृतीय अध्याय में, तो भगवान ने जवाब में क्या कहा? हां, वो तो काम है, काम ईश क्रोध ईश, वो तो काम है, तुम्हारा शत्रु काम है, काम शत्रु है। विद्धि एनम ही वैरिनम, नोट करो नोट करो, भगवान कह रहे समझ समझ जाओ, इस काम नामक वैरी को भली भांति समझो। लेकिन इसी काम वैरी को हम क्या करते हैं, एक तो हमारी ओपन डोर पॉलिसी कहते हैं, ओपन या ओपन आर्म्स, तो जो भी आए उसका स्वागत है। समझा ले पूरा? हाँ हाँ, तो हुआ कहां थे हम? ओपन डोर पॉलिसी। ओके, तो फिर शत्रु भी आ गया, तो काम और क्रोध हमारे शत्रु है, उनको हम लोग क्या करते हैं, गले लगाते हैं। सुस्वागतम काम, सुस्वागतम क्रोध। और जैसे हम लोग कल भी कह रहे थे, जो सिनेमा मतलब क्या होता है, काम और क्रोध, सेक्स एंड वॉयलेंस मतलब क्या है, काम और क्रोध का खेल, और काम और क्रोध ही अपना सारा तमाशा नंगा नाच हमारे घर में कर रहे हैं। भगवान ये तो शत्रु है, शत्रु ने सारा टेक ओवर किया, शत्रु ने प्रवेश किया हमारे घर में, वही स्वामी बना है। उसके इशारे से सब हम कार्य करते हैं। तो यहां पर इस काम के स्थान पर प्रेम की स्थापना का सिद्धांत बताया है और इस प्रेमा भक्ति से फिर राधा कृष्ण प्राप्त होंगे जो साध्य है। तो ऐसी भक्ति जिसमें काम का गंध भी नहीं हो, इसमें आत्मेंद्रिय प्रीति न हो। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा अगर है, आत्मेंद्रिय प्रीति की वांछा है उसका नाम है काम, तारबली काम। आत्मेंद्रिय प्रीति अपने इंद्रिय की प्रीति के लिए किया हुआ कार्य, अपने इंद्रिय के तृप्ति के लिए किया हुआ कार्य काम कहलाता है। और कृष्णेन्द्रिय प्रीति, कृष्ण के इंद्रिय के प्रीति के लिए किया हुआ कार्य या की हुई इच्छा और कार्य उसका नाम है प्रेम। तो ये प्रेम और काम, एक है सोना, दूसरा है फिर लोहा है। तो हुआ ऐसे हम लोग पहुंच चुके हैं, शतकोटि गोपी दे नहे काम निर्वापन तहाई थे अनुमानी श्री राधिका रघुन। प्रभु कहे ए लागी आई लाम तुम स्थाने से वस्तु तत्व वस्तु है लमोर ज्ञाने। जो मेरी अपेक्षा थी, जिस उद्देश्य से मैं आपको मिला भी हूं, वो विषय वस्तु मुझे आज आपके स्थान पर प्राप्त हुई है, मैं संतुष्ट हूं। ए बेसे जानी लो साध्य साधन निर्णय आगे आर अच्छे किचु सुनते मन होय। अब जहां तक साध्य और साधन का सिद्धांत चर्चा है, इस संबंध में तो मैं प्रसन्न हूं। अब इस संबंध में अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, किंतु और कोई बात इसी के संबंधित है तो आप कह सकते हो, तो वो बातें तो साध्य साधन निर्णय तो हो चुका है, उसके संबंधित जो बातें हैं चर्चा है आगे संवाद में कल के सत्र में हम लोग श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हरे कृष्ण। कृपया बैठ जाएं सभी लोग। कुछ सूचना है, आवश्यक सूचना है, जिसके बिना कथा का आनंद आप लोग नहीं ले पाएंगे। कृपया बैठ जाएं, कृपया सभी लोग बैठ जाएं और 5 मिनट उसके पश्चात प्रसाद की व्यवस्था है सबके लिए। सभी लोग बैठ जाएं 5 मिनट। आप लोग इस कथा के कारण इतना सुंदर हम लोग रस प्राप्त कर रहे थे। कुछ सूचनाएं हैं। आज शाम के सत्र का विषय, जो कि आप सभी लोग जानते हैं, कल भी सूचना दी गई थी, दंतवक्र एवं विदुरथ का वध, भगवान बलराम जी की तीर्थ यात्रा और श्री कृष्ण से विप्र सुदामा का मिलन, ये प्रसंग है। और नाटिका होगी आज कृष्ण सुदामा मिलन, हिजग्रेस धर्मराज प्रभु के निर्देशन में। और आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सुदामा जी कौन होंगे। और कल का विषय है, आज का विषय हम लोग सुन रहे थे, बहुत ही गंभीर विषय था आज का। वैसे पूरी राय रामानंद वार्ता ही गंभीर है, या कहना चाहिए चैतन्य चरितामृत जैसा कि महाराज जी कह रहे थे, ये पीजी कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, और आप सभी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। गंभीर विद्यार्थियों के लिए गंभीर विषय की चर्चा चल रही है। आज का विषय चल रहा था साध्य साधन तत्व सिद्धांत। सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करह अलस, इहा होते कृष्णे लागे सुदृढ़ मानस। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि खंड में ही एक हम लोगों को उपदेश देते हैं, या प्रस्तुति हमारी हो जाए चैतन्य चरितामृत के सिद्धांत को जानने के लिए, इसलिए हमें जागरूक करते हैं कि हमें सिद्धांत जानने में आलस नहीं करना चाहिए। यद्यपि महाभारत में कहा गया है धर्मस्य तत्त्वम निहिता गुहायाम, गुफा में, गुफा के अंदर ये धर्म का तत्व सिद्धांत का तत्व है, लेकिन महाजनो येन गतः स्वपंथा, महाजन जिस पथ से जाते हैं वही वास्तव में हमारे लिए पथ है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उस पथ का अनुगमन किया, उस पथ का अनुसरण किया और हमारे ऊपर बहुत ही कृपा की है। और उनकी कृपा कैसी है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य दया करहो विचार, विचार कौलिरे चित्ते पावे चमत्कार। ये बहुत ही चमत्कारिक विषय है, चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार से हमें यह कृपा प्रदान कर रहे हैं कि उनकी कृपा का यदि हम अपने चित्त में विचार करेंगे तो हमारे हृदय में एक चमत्कार की सृष्टि होगी, चमत्कार सा अनुभव होगा। वैसे हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं, लेकिन यह जो चमत्कार अभी चल रहा है राय रामानंद वार्ता और चैतन्य महाप्रभु की वार्ता, ये बहुत ही अद्भुत चमत्कार है। इससे अद्भुत चमत्कार और कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे शास्त्रों का यदि हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने के पश्चात किसी सिद्धांत पर, दृढ़ सिद्धांत पर नहीं पहुंच पाते अपने बुद्धि विवेक से। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि बहु शास्त्रे बहु वाक्य चित्ते भ्रम होय, बहु शास्त्रे बहु वाक्य चित्ते भ्रम होय। बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करके, बहुत सारे वाक्यों का श्रवण करके हमारा चित्त भ्रमित भी हो जाता है कई बार। इसलिए महाराज जी बता रहे थे कि शास्त्रों की सम्मति, आचार्यों की स्वीकृति और भगवान का अनुमोदन, ये तीनों बातें जहां एक साथ हो वही समझना चाहिए हमारा पथ है। तो शास्त्र है ही और भगवान चैतन्य महाप्रभु अनुमोदन कर रहे हैं, और वैष्णव राय रामानंद जैसे जो कि स्वयं भगवान के पार्षद हैं वो उसे स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से साध्य साधन श्रेष्ठ ना होय निश्चय। यदि बहुत सारे शास्त्रों और वाक्यों का अध्ययन हम करते रहे अपने बल पर तो साध्य साधन श्रेष्ठ, कौन सा साध्य है, कहां तक हमें पहुंचना है और उसके लिए साधन क्या है, श्रेष्ठ, दोनों ही श्रेष्ठ, श्रेष्ठ साधन के लिए, श्रेष्ठ साध्य के लिए श्रेष्ठ साधन हमें चाहिए, तो इसका निश्चय हम लोग नहीं कर पाते। तो इस सिद्धांत का निष्पादन चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद के श्रीमुख से करवाया है। तो यह अतिशय कृपा है चैतन्य महाप्रभु की, जिस तरह से नाम संकीर्तन की महिमा का प्रकाश उन्होंने श्री हरिदास ठाकुर के मुखारविंद से करवाया, उसी प्रकार से साध्य साधन के सिद्धांत का उन्होंने अनुमोदन राय रामानंद प्रभु से करवाया। और इसके अतिरिक्त राधा कृष्ण के तत्व का विचार, राधा रानी जो कि महाभाव स्वरूपा हैं और कृष्ण जो कि परम प्रेम स्वरूप हैं, उनके तत्व का विचार भी राय रामानंद के श्रीमुख से भगवान चैतन्य महाप्रभु करवाते हैं, तो उस विषय में हम लोग कल श्रवण करेंगे। वैसे साध्य साधन के अंतर्गत ही राधा और कृष्ण समाये हुए हैं, और ऐसा कह सकते हैं राधा कृष्ण में ही सारे साध्य साधन समाये हुए हैं। तो राधा कृष्ण तत्व विचार कल का विषय है, राय रामानंद किस प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रश्न का उत्तर देते हैं, उसी आधार पर प्रातःकाल 8 बजे से 9:30 बजे तक कथा समय पर प्रारंभ हो रही है, और कल भी कथा समय पर ही प्रारंभ होगी। आप सभी लोगों से विनती है कि समय पर पधारें। और आज के शाम का विषय है दंतवक्र तथा विदुरथ का वध, बलराम जी की तीर्थ यात्रा और कृष्ण सुदामा मिलन। नाटिका प्रदर्शित की जाएगी कृष्ण सुदामा मिलन की लीला के आधार पर। और एक आवश्यक सूचना है, अभी प्रसाद के तुरंत उपरांत 11:30 बजे हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है। हरिनाम संकीर्तन की जय। और उनके इंचार्ज हैं रुक्मिणी चरण प्रभु और